मैथ्यूसन न्यू टेस्टामेंट साहित्य व्याख्यान एक पाठ्यक्रम परिचय 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन द्वारा लिखित न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर है। व्याख्यान एक पाठ्यक्रम परिचय डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और शुरुआत करें। मैं आज जो करना चाहता हूँ वह बस इस कक्षा के बारे में थोड़ी सी बात करना है, जहाँ तक आपसे क्या अपेक्षा है और हम क्या करेंगे और हम इसे कैसे करेंगे और पाठ्यक्रम और कुछ के बारे में थोड़ी बात करेंगे अन्य चीजों के बारे में और आप वह जानकारी कहाँ पा सकते हैं। लेकिन आइए पहले प्रार्थना शुरू करें और फिर हम ऐसा करेंगे। पिता, नए नियम के रूप में हमारे लिए आपके शब्द और रहस्योद्घाटन से कम कुछ नहीं का अध्ययन करने के अवसर और विशेषाधिकार और जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कक्षा के परिणामस्वरूप हमें इसे अलग अलग तरीकों से देखने और अलग अलग प्रश्न पूछने की चुनौती मिलेगी। पिता, हमें इसे उन अन्य विषयों से जोड़ने की चुनौती देने में मदद करें जिन्हें हम जीवन में और यहाँ कॉलेज में अपनाते हैं। और पिता, मैं अब धैर्य के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हम इस सामग्री के माध्यम से काम करते हैं, दृढ़ता के लिए, और भगवान, इस सेमेस्टर के माध्यम से आगे बढ़ने और नए नियम और इसे समझने और पढ़ने और इसे लागू करने के आसपास घूमने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने की शक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम यीशु के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट में आपका स्वागत है। मैं जो करना चाहता हूँ वह यह है कि पहली चीज जो मैं करूँगा वह यह है कि यह कक्षा किस प्रकार के बारे में है और हम न्यू टेस्टामेंट के बारे में कैसे सोचेंगे, और उसके बाद विशिष्ट जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं के बारे में कुछ विस्तृत बातें बताऊंगा। फिर आप पाठ्यक्रम जैसी जानकारी पा सकते हैं और एक नोटबुक भी है जो इस पाठ्यक्रम के साथ आती है। मैं बस एक क्षण में इसके बारे में कुछ कहूंगा। जिस तरह से मैं न्यू टेस्टामेंट को कवर करना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ चल रहा था तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि इस तरह के सर्वेक्षण पाठ्यक्रमों को अक्सर किस तरह से व्यवहार किया जाता है। पुराने टेस्टामेंट की तुलना में नया टेस्टामेंट मेरे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से लंबे समय तक लेखन के एक बहुत बड़े समूह को कवर करता है। नया नियम अधिक संक्षिप्त है और इसमें बहुत कम समय शामिल है, कम से कम वह समय जिसमें यह लिखा गया था और जिन घटनाओं का यह उल्लेख कर रहा था, पुराने की तुलना में बहुत छोटा है, तो उस लिहाज से मेरा काम थोड़ा आसान है। हालांकि जब भी आप किसी सर्वेक्षण कक्षा के साथ काम कर रहे हो तो दो चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इतना सामान्य हो सकता हूँ और प्रत्येक पुस्तक को शीघ्रता से कवर कर सकता हूँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम संपूर्ण नए नियम मैथ्यू से रहस्योद्घाटन तक पहुँच सकें और पुस्तक के मुख्य लेखक, इसके लिखे जाने का समय और मुख्य चीजों का परिचय दे सकें, पृष्ठभूमि और मुख्य विषय, और बस उसी तरह से पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़े। और जैसा कि मैंने कहा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको हर किताब के बारे में कुछ न कुछ मिलेगा और आपको हर किताब का परिचय मिलेगा। समस्या यह है कि आपको वास्तव में किसी भी विशिष्ट पाठ या कुछ पुस्तकों के विशिष्ट मुद्दों या व्याख्यात्मक मुद्दों से परिचित नहीं कराया गया है। आप इससे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। पैमाने के दूसरे छोर पर दूसरा विकल्प संभवतः अधिक सामान्य है, और वह केवल मैथ्यू से शुरू करना और काम करना और देखना है कि आप न्यू टेस्टामेंट के माध्यम से कितनी दूर तक पहुँचते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो इस तरह से न्यू टेस्टामेंट सर्वेक्षण पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, जिन्होंने इसे पढ़ाने के दौरान कभी भी अधिनियम की पुस्तक को पार नहीं किया है। तो यह बहुत वांछनीय भी नहीं है, क्योंकि तब आपको न्यू टेस्टामेंट का लगभग एक चौथाई या पांचवा हिस्सा मिल जाता है और आप किसी और चीज के संपर्क में नहीं आते हैं। मैंने दोनों का एक संयोजन करना चुना है ताकि अधिकांश भाग के लिए, चूंकि यह एक सर्वेक्षण पाठ्यक्रम है, हम काफी व्यापक बने रहेंगे और पुस्तकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं मैथ्यू से लेकर रहस्योद्घाटन तक सभी पुस्तकों को कुछ हद तक छूने का इरादा रखता हूँ, लेकिन कभी कभी हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, कभी कभी हम कुछ किताबों में धीमे हो जाएंगे और समस्याग्रस्त ग्रंथों या अनुच्छेदों पर अधिक विस्तृत नजर डालेंगे। वे संभवतः आपके लिए कुछ रुचिकर होंगे या वे अंश जो पुस्तक को समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे या ऐसा ही कुछ। तो फिर ज्यादातर समय यह एक विमान में उड़ने और न्यू टेस्टामेंट की किताबों के पूरे परिदृश्य को देखने जैसा होगा, लेकिन कभी कभी हम जमीन के काफी करीब गोता लगाएंगे और इससे पहले कि हम एक विस्तृत नजर डालें, वापस ऊपर जाओ। तो उम्मीद है हम दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ को जोड़ सकते हैं, आपको कम से कम कुछ न कुछ दे सकते हैं, प्रत्येक पुस्तक का परिचय दे सकते हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि प्रत्येक पुस्तक किस बारे में है और वे नए नियम में क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको कुछ पाठों का स्वाद भी देता है जो समस्याग्रस्त हैं या जो आपके समझने के लिए दिलचस्प या महत्वपूर्ण हैं। मैं अक्सर आम तौर पर हर बार जब भी इस कक्षा को पढ़ाता हूँ तो सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि शायद मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यह है कि मैं न्यू टेस्टामेंट के पर्याप्त पाठों का विस्तार से अध्ययन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। कुछ अंशों में विस्तार से यदि यह आपकी शिकायत है तो मेरे पास एक उत्तर है और वह है बाइबल अध्ययन का प्रमुख बनना, और फिर आप वे सभी कक्षाएं ले सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो विशिष्ट पुस्तकों पर केंद्रित हों, लेकिन यह इस कक्षा का उद्देश्य नहीं है। फिर से मैं आपको यह बताने के लिए समय समय पर विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं किताबों की व्याख्या कैसे करता हूँ और किताबों तक कैसे पहुँचूँ, लेकिन फिर भी यदि आप पाठ के विस्तृत अध्ययन की तलाश में हैं, तो या तो बाइबल के लिए अपने कुछ ऐच्छिक का उपयोग करें, अध्ययन करें, या डबल मेजर का अध्ययन करें, या इसे माइनर के रूप में जोड़े, या बाइबल अध्ययन का प्रमुख बने, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में विशिष्ट बाइबल पाठ में हमारी अनुमति से कहीं अधिक विस्तार से जाने में सक्षम होंगे। यह क्लास फिर से मैथ्यू से शुरू करने और यह देखने के अलावा कि हम कितनी दूर तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके बजाय मैं फिर से आपको नए नियम की हर चीज में से कुछ न कुछ थोड़ा सा स्वाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम इसी तरह जा रहे हैं। जैसा कि हम प्रत्येक पुस्तक पर काम करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि नए नियम के दस्तावेज और उन्हें समझना, और पुराने नियम के समान उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों के संयोजन के रूप में समझना है। यानी हम देखेंगे कि कोई भी बाइबल लेखक सिर्फ किताब लिखने के लिए बैठकर लिखना शुरू नहीं करता। वे अक्सर पहली शताब्दी में चर्च में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करते थे, और इसलिए जब पॉल बैठा और गलाटियंस की तरह एक किताब लिखी तो वह सिर्फ बैठा नहीं था, और एक दिन प्रेरित महसूस किया और वह बैठ गया, क्योंकि 2000 साल बाद ईसाइयों को इस किताब को पढ़ने की जरूरत थी जिन्हें हम गलाटियन कहते हैं। पॉल को एक बहुत ही विशिष्ट समस्या के बारे में पता चला जिससे वह काफी परेशान था और क्रोधित भी था, और इसके जवाब में वह बैठ गया और पहली शताब्दी में लिखने का एक बहुत ही सामान्य तरीका इस्तेमाल किया। जब आप किसी से बात करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते थे, अगली सबसे अच्छी बात थी पत्र लिखना। इसलिए पॉल ने गलातियों को एक पत्र लिखा। इसलिए एक अर्थ में हम नए नियम को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहते हैं। ये जीवित सांस लेने वाले दस्तावेज हैं जो विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में बहुत विशिष्ट आवश्यकताओं, समस्याओं और स्थितियों के बारे में लिखे गए हैं जिनके बारे में लेखक को पता है और वह उन्हें संबोधित करने के लिए लिखता है। न्यू टेस्टामेंट की कोई भी किताब धर्मशास्त्रीय पाठ्य पुस्तक होने के करीब भी नहीं है, जो आपको बताती है कि पॉल प्रभु भोज के बारे में क्या सोचता है। यहाँ वह सब कुछ है जो पॉल आध्यात्मिक उपहारों के बारे में सोचता है। यहाँ वह सब कुछ है जो पॉल यीशु के बारे में सोचता है, और वह सब कुछ जो वह पवित्र आत्मा के बारे में सोचता है। इसके बजाय फिर से पॉल संबोधित कर रहा है। हाँ, वह धार्मिक विचारों और विचारों को लिख रहा है, लेकिन वह बहुत विशिष्ट परिस्थितियों और परिस्थितियों को संबोधित कर रहा है। इसलिए हम जो करना चाहते हैं उसका एक हिस्सा नए नियम को देखना है, और शायद वह हमारा प्राथमिक ध्यान होगा। वास्तव में नए नियम को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखना है। पहली सदी के ईसाइयों के रूप में इन पत्रों को पढ़ना एक तरह से कैसा था? इनका उत्पादन सबसे पहले क्यों किया गया? फिर मैथ्यू ने अपना सुसमाचार क्यों लिखा और मार्क ने एक सुसमाचार क्यों लिखा? ल्यूक ने तीसरा और फिर चौथा, जॉन क्यों लिखा? नए नियम में चार अलग अलग सुसमाचार होने का क्या मतलब है जो मसीह के जीवन की पुष्टि करते हैं? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चारों बहुत विशिष्ट परिस्थितियों के लिए लिख रहे थे, और वे अपने लिखने के तरीके में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि इस कक्षा के अंत में आपको नए नियम और दस्तावेजों की समझ होगी, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही विशिष्ट वातावरण में तैयार किए गए जीवित सांस लेने वाले दस्तावेज हैं। और इसलिए यह मेरा काम होगा एक तरह से इस प्रकार के वातावरण का पता लगाना, इसे आपके लिए बनाना, और हमें एक साथ यह देखने में मदद करने का प्रयास करना कि पहली शताब्दी में क्या चल रहा था और इनमें से कुछ क्यों थे किताबें लिखी गईं। हम उनमें से कुछ संदर्भों को कैसे समझते हैं? नए नियम में प्रवेश करने से पहले हम जिन पहले पाठों पर गौर करेंगे उनमें से एक क्रिसमस कहानी है, जो आपको यह दिखाएगा कि इसे इसके व्यापक संदर्भ में रखने से कैसे फर्क पड़ता है। अक्सर क्रिसमस की कहानी के बारे में हमारी समझ और अवधारणा, जो चित्र या वैचारिक ढांचा हमने चित्रित किया है, वह संभवतः हमारी आधुनिक परंपरा और क्रिसमस के बारे में कुछ कहानियों से अधिक सूचित किया गया है जितना कि बताया गया है पहली सदी के ऐतिहासिक संदर्भ से। तो यह नए नियम को देखने का एक तरीका है उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तियों द्वारा अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों को लिखी गई विशिष्ट समस्याओं के जवाब में एक विशिष्ट वातावरण में उत्पादित ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में देखना और उस प्रकाश में नए नियम को समझने का प्रयास करना। हालांकि साथ ही नए नियम में वह शामिल है जिसे भगवान के लोगों ने हमेशा धर्म ग्रंथों या भगवान के वचन से कम नहीं माना है, और इसलिए हमें यह समझना होगा कि यह कैसे संभव है कि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की स्थायी वैधता बनी रहे। वे आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए धर्म ग्रंथ, परमेश्वर के वचन के रूप में कैसे कार्य करते हैं। इसलिए यद्यपि हमारा मुख्य कार्य और हमारा मुख्य जोर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण करना और इन दस्तावेजों की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा, मैं नहीं चाहता कि हम इस तथ्य से अनजान रहें कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज अभी भी कैसे कार्य करते हैं धर्मग्रंथ के रूप में। वे अभी भी परमेश्वर के वचन के रूप में कैसे कार्य करते हैं? वे आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन कैसे हैं? क्योंकि वे केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं। यदि ऐसा था तो हम केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख सकते थे और उसे वहीं छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि वे धार्मिक दस्तावेज भी हैं, चर्च ने हमेशा माना है कि ये ईश्वर प्रेरित धर्म ग्रंथ के शब्द हैं। वे परमेश्वर के वचन के रूप में हमसे कैसे बात करना जारी रखते हैं? ऐतिहासिक रूप से निहित इन ग्रंथों का स्थायी धार्मिक संदेश क्या है? तो यह कक्षा इसी प्रकार चल रही है। इससे पहले कि मैं किसी विशिष्ट आवश्यकता के बारे में बात करूं, कोई प्रश्न? दूसरी बात यह भी है कि मुझे आशा है हालांकि इस आकार और इस प्रकृति की एक कक्षा, एक सर्वेक्षण कक्षा होने के नाते इसमें एक निश्चित मात्रा में व्याख्यान आवश्यक है। उम्मीद है यह नहीं है, मैं नहीं हूँ, आप एक घंटे तक आकर मेरी बातें नहीं सुनेंगे। मैं प्रश्नों का स्वागत करता हूँ। मैं मुझसे असहमत होने वाले लोगों या टिप्पणियों का स्वागत करता हूँ, और कभी कभी मैं आपसे आपके द्वारा पढ़ी गई बातों के बारे में या पाठ के बारे में या मेरे द्वारा कही गई किसी बात के बारे में या किसी विशिष्ट, कभी कभी पाठ में किसी विशिष्ट समस्या के बारे में प्रश्न पूछूंगा। हम इस पर साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इसका अंत सिर्फ इतना नहीं होगा कि मैं यहाँ एक घंटे तक खड़ा रहूं और आपसे न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात करूं, जितना मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। इस पाठ्यक्रम में हम क्या कर रहे हैं, इस पर अब तक कोई प्रश्न है? ठीक है, यदि नहीं तो दूसरी चीज विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। पहली बात तो यह है कि ठीक है, मुझे वापस जाने दीजिए। दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, आपकी पाठ्य पुस्तकों और बाइबल के अलावा, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। दो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनकी आपको इस कक्षा के लिए आवश्यकता है, एक पाठ्यक्रम और फिर एक नोटबुक। एक नया नियम है वह नोटबुक जिसका मैं हमारी कक्षा के व्याख्यानों और चर्चाओं में अनुसरण करूंगा। इन दोनों को आप ब्लैकबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस वहां पहले से ही है, नोट नहीं है। मैं अभी भी थोड़ा बदलाव कर रहा हूं, लेकिन वे सोमवार की कक्षा अवधि से पहले सामग्री के तहत इस कक्षा के लिए ब्लैकबोर्ड साइट पर होंगे, इसलिए उम्मीद है कि मैं उन्हें रविवार रात किसी समय उठाऊंगा। तो रविवार की रात, लेकिन कम से कम सोमवार को इस कक्षा से पहले इस कक्षा के नोट्स डाउनलोड करने के लिए ब्लैकबोर्ड की जांच करें। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुनः मैं अपने व्याख्यान चर्चा में इसी का पालन करूंगा। जिन परीक्षाओं के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे वे भी नोटबुक पर आधारित होंगी, और फिर वह ब्लैकबोर्ड पर होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि मैं आज पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी बात करने जा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि इसका जिक्र किए बिना, लेकिन उम्मीद है कि जब आप वास्तव में इसे डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे तो यह आपको इसे समझने में मदद करेगा। तो कृपया ब्लैकबोर्ड पर जाएं और पाठ्यक्रम देखें, और फिर नोट्स और नोटबुक सोमवार को कक्षा से पहले उपलब्ध होंगे। अब यह कहने के बाद कि पहली चीज, जाहिर है, जो आपको कक्षा में लानी होगी वह एक बाइबल है। यह नए नियम का इतिहास है, इसलिए कृपया जो भी अनुवाद आपको पसंद हो उसका न्यू टेस्टामेंट लेकर आएं। मैं आमतौर पर या तो NIV या नए संशोधित मानक संस्करण का पालन करूंगा, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पाठ को बहुत अधिक नहीं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक नया नियम है। यदि आप ग्रीक पढ़ते हैं तो आप ग्रीक न्यू टेस्टामेंट भी ला सकते हैं, वह ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास नया नियम है कृपया उसे लाएं। जाहिर तौर पर हम इसका उल्लेख करेंगे और अपनी कक्षा की चर्चा में और विभिन्न नए नियम की पुस्तकों पर चर्चा में इसका उपयोग करेंगे। दूसरी बात, जहां तक पठन सामग्री की बात है, इस कक्षा के लिए तीन प्राथमिक पाठ्य पुस्तकें हैं। मुख्य पाठ्य पुस्तक आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक की तरह नए नियम का परिचय है। यह पहली बार है जब मैंने इस पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया है, जब मैंने पहली बार इस सेमेस्टर में पाठ्य पुस्तकों को बदलने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो मुझे पता चला कि यह उसी तरह से है जिस तरह से मैं न्यू टेस्टामेंट की प्रत्येक पुस्तक को संभालता हूँ। इसमें पृष्ठभूमि की चर्चा है और पुस्तक क्यों लिखी गई है, और फिर यह प्रत्येक पुस्तक के प्रमुख विषयों और विचारों और आंदोलनों को छूती है। तो यह एक तरह से हमारी प्राथमिक पाठ्य पुस्तक होगी। आप इसे पाठ्यक्रम में परिचय के अंतर्गत पाएंगे। प्रत्येक सप्ताह में मैंने सूचीबद्ध किया है कि आपको क्या पढ़ना आवश्यक है। परिचय मुख्य पाठ्य पुस्तक होगी और आप उस दिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके अनुरूप अध्याय पढ़ेंगे। और वैसे कृपया पाठ्य पुस्तक पढ़ना जारी रखें। मुझे यह प्रश्न हर बार हर सेमेस्टर में मिलता है, कृपया पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक पढ़ना जारी रखें भले ही हम कक्षा में कहीं भी हों। अगर हम थोड़ा पीछे रह गए तो यह मत सोचना कि आप ब्रेक ले सकते हैं। चाहे हम कहीं भी पहुंचें, पाठ्यक्रम जारी रखें। आम तौर पर अगर मैं पीछे रह जाता हूं तो कम से कम एक या दो सप्ताह में पकड़ बना लेता हूं, लेकिन पाठ्य पुस्तक के साथ बना रहता हूं। पाठ्यक्रम के साथ इस पाठ्य पुस्तक में दूसरी बात यह है कि इसमें कई उपयोगी चार्ट और ऐसी चीजें हैं जो पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत करती हैं। तो फिर यह आपकी मुख्य और प्राथमिक पाठ्य पुस्तक है जो वास्तव में नए नियम की पुस्तकों के अनुसार व्यवस्थित की गई है। दो अन्य पुस्तकें हैं जिन्हें मैं आपको पढ़वाने जा रहा हूं। उनमें से एक को मेकिंग सेंस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। यह क्या करता है? यह नए नियम का सर्वेक्षण नहीं है। यह अध्यायों की एक श्रृंखला है, या तीन या चार अध्याय। ईसाइयों के रूप में हम नए नियम को कैसे पढ़ते हैं और लागू करते हैं उससे संबंधित मुद्दों पर। इसलिए उदाहरण के लिए पहला मुख्य अध्याय इस पर है कि क्या नया नियम ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है, या क्या नया नियम काफी हद तक काल्पनिक है, क्या नए नियम के लेखक धर्मशास्त्र और ईसा मसीह के बारे में उनके विश्वास के बारे में इतने चिंतित थे कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी घटनाओं की ऐतिहासिकता में बिल्कुल। तो सवाल यह है, केन, जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पहले ही कह चुके हैं, हाँ, हम धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन नए नियम के दस्तावेजों पर भी ऐतिहासिक रूप से किस हद तक भरोसा किया जाना चाहिए, हम उस मुद्दे पर भी और बात करेंगे। इसके संबंध में उठाने के लिए कई प्रश्न हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से नए नियम की कोई भी पुस्तक इतिहास को उस तरह लिखने का इरादा नहीं रखती है जिस तरह से हम इसके बारे में सोचते हैं। यदि आप एक इतिहास की किताब उठाते हैं जिसका उद्देश्य कुछ हद तक, चाहे वह इसे लिखने वाले के दृष्टिकोण से कितना भी रंगीन क्यों न हो, मुख्य रूप से कुछ ढांचे में ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ना है। नए नियम के दस्तावेज मुख्य रूप से इतिहास की पुस्तक प्रकार के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए नहीं हैं। वे धर्मशास्त्र हैं, लेकिन धर्मशास्त्र लिखने में नए नियम पर ऐतिहासिक रूप से किस हद तक भरोसा किया जाना चाहिए, पहला प्रश्न इसी से संबंधित है। एक और प्रश्न है जो यह पुस्तक उठाती है, और वह यह है कि क्या ईसाई धर्म स्वयं यीशु के पास वापस जाता है? मुख्य विचारों में से एक जो नए नियम के आसपास अभी भी काफी आम है, वह यह है कि जिसे हम ईसाई धर्म के रूप में जानते हैं, जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं, और हम ईसा मसीह और चर्च आदि के बारे में जो मानते हैं, वह प्रेरित पॉल से आता है, जिसने लिखा था अधिकांश न्यू टेस्टामेंट, रोमन, गलाटियन आदि। लेकिन यीशु ने वास्तव में कभी चर्च की कल्पना नहीं की थी। यीशु ने कभी उस चीज की कल्पना नहीं की जिसे हम ईसाई धर्म के रूप में जानते हैं। यह कुछ ऐसा था जो बहुत बाद में आया। इसलिए एक अर्थ में आपके पास नए नियम में दो या तीन या अधिक धर्म हैं। और पॉल, जिसे हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं, उनमें से केवल एक है। खैर, दूसरा अध्याय इस प्रश्न को संबोधित करता है, जिसे हम ईसाई धर्म के रूप में जानते हैं, क्या वह पॉल का आविष्कार है जो बाद में आया, या क्या यह वास्तव में यीशु के पास वापस जाता है? क्या यह कुछ ऐसा है जिसके लिए यीशु ने कुछ हद तक स्वयं तैयारी की थी? और फिर अंतिम अध्याय यह है कि हम नए नियम को कैसे लागू करें। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने कहा, नया नियम धार्मिक मान्यताओं की सूची नहीं है। यदि हमारे पास वह होता तो यह बहुत आसान होता। इसके बजाय, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, भगवान ने खुद को बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित पाठ में प्रकट करना चुना है। तो आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? 2000 साल बाद एक बिल्कुल अलग संस्कृति में रहते हुए, एक अलग भाषा बोलते हुए, हम उन प्राचीन ग्रंथों का अर्थ कैसे समझते हैं? आज हम उन्हें परमेश्वर के लोगों के रूप में कैसे लागू करते हैं? उदाहरण के लिए, यह पुराने नियम को भी लाता है, लेकिन जब आप नए नियम के संबंध में पुराने नियम के कानून को पढ़ते हैं, तो मैं उनमें से कुछ कानूनों को कैसे लागू करूं? जब मैं पुराने नियम में वापस जाता हूं और कानून पढ़ता हूं जो मुझसे कहता है कि मुझे दो अलग अलग प्रकार के कपड़ों से सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो मैं इसे दुनिया में कैसे लागू करूं? क्या मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं या इसका मुझसे कुछ कहना है? या जब पुराने नियम का कानून कहता है कि अपने घर की छत के चारों ओर एक मुंडेर या बाड़ बनाओ, तो इसका क्या मतलब है और मैं इसे कैसे लागू करूं? या हम अब पशुबलि क्यों नहीं देते? उदाहरण के लिए, हम में से कुछ लोग टोपी और इस तरह की चीजों के अलावा पूजा में शॉल या टोपी या सिर ढकना क्यों नहीं पहनते, जो कि आम बात है। लेकिन कुरिन्थियों में पॉल महिलाओं को किसी प्रकार का सिर ढकने के लिए कहता है। क्या यह ऐसी चीज है जिसका हमें पालन करना चाहिए या नहीं? इसलिए अंतिम अध्याय इस बात से संबंधित है कि हम न्यू टेस्टामेंट को कैसे लागू करते हैं, एक दस्तावेज जो एक तरफ बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित है, हमारे अपने से बहुत अलग वातावरण और संस्कृति और ऐतिहासिक सेटिंग में तैयार किया गया है, फिर भी हम अभी भी इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का स्थायी वचन है। तो हम इसे कैसे लागू करें? हम इसे कैसे पढ़े? अंतिम अध्याय हमें इसका उत्तर देने में मदद करेगा। आखिरी पाठ्य पुस्तक जो मैंने आपसे लाने के लिए कहा है, वह द लॉस्ट लेटर्स ऑफ पेरगमम नामक पुस्तक है। यह संभवतः एकमात्र पुस्तक है जिसकी मुझे तब से अब तक आवश्यकता है, जब मैंने पहली बार इस कक्षा को पढ़ाया था, और यह आमतौर पर वह पुस्तक है जिसे छात्रों से सबसे अच्छी समीक्षा मिलती है। ब्रूस लॉन्गनेकर द्वारा द लॉस्ट लेटर्स ऑफ पेरगमम। यह किताब क्या है? नाम से ही कुछ पुराना सा लगता है, लेकिन यह किताब क्या है, इतना तो आप जानते ही हैं कि यह किताब पूरी तरह से काल्पनिक है। हालांकि यह वास्तविक घटनाओं और वास्तविक स्थानों और नामों, वास्तविक व्यक्तियों पर आधारित है, मुख्य पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं, जहां तक मुझे पता है, लेकिन आप ल्यूक और मैथ्यू और डोमिनिटियन जैसे कुछ रोमन सीजर जैसे वास्तविक पात्रों के संदर्भ देखेंगे। आपको पहली शताब्दी में वास्तविक स्थानों और वास्तविक घटनाओं और वास्तविक रीति रिवाजों के संदर्भ मिलेंगे। लेकिन यह क्या है? यह कोई कथा नहीं है। यह क्या है? यह काल्पनिक पत्रों का एक संग्रह है जिसे ब्रूस लॉन्गनेकर ने स्वयं लिखा है। और यह क्या है? यह बस दो या तीन काल्पनिक लोगों के बीच काल्पनिक पत्र के रूप में एक संवाद या पत्राचार है, उनमें से एक है। मुझे लगता है कि उनमें से एक वास्तव में ल्यूक है, जो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक का लेखक है, और एक्स उनमें से एक है आंकड़े, लेकिन यहाँ पत्र काल्पनिक है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो ल्यूक ने वास्तव में लिखा हो। लेकिन लॉन्गनेकर जो कर रहा है, वह बस आपके साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी जोड़ने का एक दिलचस्प और सम्मोहक तरीका लाने की कोशिश कर रहा है। रोमन शासन के प्रभुत्व वाली संस्कृति में एक ईसाई के रूप में रहना कैसा था, और बुतपरस्त धर्म और बुतपरस्त धार्मिक प्रथाओं वगैरह वगैरह का बोलबाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको यह बहुत आकर्षक और बहुत दिलचस्प लगेगा। दोबारा कृपया समझें कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन यह जो कुछ भी है उसे प्रसारित और संबंधित कर रहा है। फिर से वास्तविक घटनाओं और वास्तविक सांस्कृतिक स्थितियों, वास्तविक सांस्कृतिक और भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भों, धार्मिक मान्यताओं और प्रणालियों का चित्रण और एथलेटिक घटनाएं आधारित हैं वास्तविक अनुसंधान और श्रेणियां। तो यह एक अलग तरह की किताब है। इसका मतलब अकादमिक होना नहीं है। इसका अभिप्राय केवल ऐतिहासिक तथ्यों को बताना नहीं है। फिर यह पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन आपको नए नियम के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कारकों से परिचित कराने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका और सहायक तरीका है। और इसलिए हम कभी कभार इस बारे में बात करेंगे, लेकिन यह तीसरी पाठ्य पुस्तक होगी जिसे आप पढ़ेंगे, और आपको पाठ्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह के लिए पढ़ने का शेड्यूल मिलेगा। प्रत्येक सप्ताह के लिए पठन सप्ताह की प्रथम श्रेणी अवधि के पहले दिन होता है, जो आमतौर पर सोमवार होता है। लेकिन अगर हमारी कोई छुट्टी या बर्फबारी वाला दिन या कुछ और है, तो जाहिर तौर पर वह अगला दिन होगा जब हम मिलेंगे। लेकिन आमतौर पर सोमवार को पाठ्य पुस्तकों से आपका पढ़ना तय होता है और आपको अपने पाठ्यक्रम पर पाठ्यक्रम अनुसूची मिल जाएगी। तो यह पहली चीज है, आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। दूसरा पाठ आपके साथ एक नया नियम लाने के उल्लेख पर वापस आता है। आपको न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ना होगा और आपको अपने पाठ्यक्रम में एक शेड्यूल भी मिलेगा। आप वास्तव में अगले सप्ताह दूसरा सप्ताह शुरू करेंगे। यह पहला सप्ताह है और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज के लिए कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले सप्ताह दूसरे सप्ताह तक आप पढ़ चुके होंगे। मुझे लगता है कि यह मैथ्यू या मैथ्यू और मार्क की तरह है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप नए नियम को वहां पढ़ेंगे जहां आप पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में वास्तविक नए नियम की किताबें मैथ्यू से रहस्योद्घाटन तक पढ़ रहे हैं। अब कृपया समझें कि ये पुस्तकें जरूरी नहीं कि हम प्रत्येक सप्ताह जो कवर कर रहे हैं उसके अनुरूप हों। हो सकता है कि हम उससे थोड़ा पीछे हों, जो ठीक है। यह बेहतर है कि आपने आगे पढ़ लिया है और कक्षा में इसके बारे में बात करने से पहले ही आप सामग्री पढ़ चुके हैं। लेकिन अगले सप्ताह से आप मैथ्यू से शुरुआत करेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। यह इस सेमेस्टर के सप्ताहों पर आधारित है। बस प्रत्येक सप्ताह का पालन करें और अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ उस सप्ताह के लिए आवश्यक नए नियम की किताबें पढ़ेंगे। तो यह पहली चीज है जिसे आप न्यू टेस्टामेंट और अपनी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको इसे पढ़ने में मदद करेगी, या सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि आपकी तीनों पाठ्य पुस्तकों को, वह यह है कि आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर 6 अघोषित या पॉप क्विज होंगी। ये प्रश्नोत्तरी आपको विफल करने या आपको परेशान करने के लिए नहीं है। मैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना संभव हो सके मैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यदि आपने अपना अध्ययन कर लिया है तो आपको इन क्विज से कोई समस्या नहीं होगी। वे केवल यह देखने के लिए हैं कि आपने सामग्री पढ़ी है या नहीं, और मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछने जा रहा हूँ जैसे कि चार्ट के दाहिने कोने में पृष्ठ 45 पर चार्ट का परिचय देते समय लेखक ने कौन सा शब्द लिखा है। मैं आपसे उस तरह की कोई बात नहीं पूछने जा रहा हूँ, या पृष्ठ के निचले भाग में फुटनोट में क्या था, या पैराग्राफ 3 के नीचे की 5वीं पंक्ति में क्या था। मैं आपसे विस्तृत रूप से पूछने जा रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, जब लेखक किसी चीज पर समय बिताता है या किसी चीज पर जोर देता हुआ प्रतीत होता है, तो मैं उसी प्रकार की चीज पूछने जा रहा हूँ। लेकिन पूरे सेमेस्टर में अघोषित रूप से पठन सामग्री पर 6 प्रश्नोत्तरी होंगी। आम तौर पर वे क्विज सोमवार को होंगे। कभी कभी मैं बुधवार तक इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें शुक्रवार का समय नहीं दूंगा। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि अगर मैं सोमवार या बुधवार के लिए पढ़ी गई किसी चीज पर प्रश्नोत्तरी ले रहा होता तो मुझे वह शुक्रवार तक याद नहीं रहती। इसलिए जब यह आपके दिमाग में ताजा होगा तो मैं इसे करूंगा। इसलिए आमतौर पर यह सोमवार होगा, लेकिन कभी कभी यह बुधवार भी हो सकता है। इसलिए हालांकि आप सोमवार तक अपना पाठ पूरा कर लेंगे, मैं इसकी समीक्षा करूंगा और बुधवार से पहले इसे फिर से पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको शुक्रवार को प्रश्नोत्तरी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर यदि आपने सोमवार तक अपनी सारी सामग्री पढ़ ली है, यदि आप मेरे जैसे हैं, तो आप आम तौर पर उस समय तक सामग्री भूल चुके होंगे। नहीं, यह वर्ग नहीं, आप उस सामग्री को नहीं भूलेंगे, वह बहुत मूल्यवान है ना? तो 6 अघोषित प्रश्नोत्तरी। दूसरी आवश्यकता यह है कि इस कक्षा में 4 परीक्षाएं होंगी जिनमें आपके बाइबल पढ़ने की सामग्री शामिल होगी। फिर मैं बाइबल पढ़ने से विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछने जा रहा हूं, जहां तक मैथ्यू अध्याय 5 का श्लोक 16 कहता है। मैं इस तरह की चीजें नहीं पूछने जा रहा हूं। लेकिन आपका बाइबल पढ़ना और मुख्य रूप से व्याख्यान सामग्री, यहीं पर आपकी नोटबुक आती है। जैसा कि मैंने कहा, व्याख्यान और कक्षा चर्चा उस नोटबुक का अनुसरण करेगी जो ब्लैक बोर्ड पर है, जिसे आपको डाउनलोड करना है, और यह मुख्य रूप से है, और आपका बाइबल पढ़ना वही है जिससे परीक्षाएं ली जाएंगी। मैं जानता हूं कि मैंने वाक्य को एक पूर्वसर्ग के साथ समाप्त किया है, लेकिन यह ठीक है। मैं अकादमिक लेखन में इसे और अधिक देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। इसलिए परीक्षाएं मुख्य रूप से उस व्याख्यान चर्चा सामग्री से ली जाएंगी जो उस नोटबुक से आती है, जिसे आपको डाउनलोड करना है। इसमें पाठ्य पुस्तक पढ़ना शामिल नहीं होगा। तो ऐसा होगा, कम से कम मैं जानबूझकर नहीं, केवल इस अर्थ में कि इनमें से कुछ कक्षा में हम जो कहते हैं उससे ओवरलैप होता है, मैं जानबूझकर पाठ्य पुस्तकों से कोई परीक्षा प्रश्न नहीं ले रहा हूं। क्विज इसी के लिए हैं। और वैसे क्विज के बारे में एक और बात, क्विज केवल उस सप्ताह के लिए हैं। इसलिए यदि हमारे पास लगभग 3 सप्ताह तक कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, तो आप उस सारी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रश्नोत्तरी केवल उस सप्ताह की पढ़ाई के साथ समाप्त होगी। यह एक और प्रश्न है जो मुझे लगभग 100 बार मिलता है, भले ही मुझे लगता है कि मैंने इसे स्पष्ट रूप से समझाया है। तो क्या हर कोई इसे समझता है? प्रश्नोत्तरी केवल उस सप्ताह की पढ़ाई पर होती है, किसी अन्य सप्ताह की नहीं। इसलिए यदि दूसरे सप्ताह में कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होती है, तो आप प्रश्नोत्तरी में पढ़ने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। जब आप कक्षा में आते हैं, यदि मैं आपको एक पॉप क्विज देता हूं, तो यह उस सप्ताह का पाठन होगा, किसी पिछले सप्ताह का नहीं। ठीक है, तो 4 परीक्षाएं जो मोटे तौर पर न्यू टेस्टामेंट के मुख्य भागों को कवर करती हैं। पहला सुसमाचार और कुछ पृष्ठभूमि सामग्री में होगा। इस कक्षा के पहले या 2 सप्ताह में हम मुख्य रूप से नए नियम की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। नया नियम शून्य में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों और धार्मिक धाराओं के अंत में उत्पन्न हुआ, जिन्होंने इसे जन्म देने में मदद की, या कम से कम न्यू टेस्टामेंट ने अक्सर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसलिए हम कुछ सप्ताह बातचीत में बिताएंगे, नए नियम की पुस्तकों पर काम करने के लिए मंच तैयार करेंगे। लेकिन पहला परीक्षण आम तौर पर गॉस्पेल में उस सामग्री पर होगा, और फिर अधिनियमों और पॉल के पत्रों के माध्यम से काम करना होगा, और अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में समाप्त होगा। आप इसे अपने पाठ्यक्रम में पा सकते हैं, फिर से मेरे पास सप्ताह है। मेरे पास कोई सटीक तारीख नहीं है। इसका बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामग्री तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। क्या हमारे पास बर्फबारी के दिन हैं या ऐसा कुछ है, क्या मैं पीछे रह जाता हूं, या आप कितनी बात करना और प्रश्न पूछना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर मेरे पास कम से कम वह सप्ताह है जिसमें आप परीक्षाओं की उम्मीद कर सकते हैं। पहला भाग संभवतः पांचवें सप्ताह के अंत में पृष्ठभूमि और गॉस्पेल पर होगा। तो परीक्षा से पहले आपके पास लगभग पांच सप्ताह हैं। और फिर हम कई और सप्ताह बिताएंगे, अधिक सामग्री पर काम करेंगे, फिर हमारे पास उसे कवर करने वाली एक और परीक्षा होगी। तो कक्षा में उनमें से चार होंगे। एक अंतिम परीक्षा भी होगी जो उन चारों पर व्यापक होगी। हालांकि यह उन चार पर आधारित है, अंतिम परीक्षा नई जानकारी या नई सामग्री पेश नहीं करती है जो पिछली किसी भी परीक्षा में नहीं थी। इसलिए यदि आपको चार परीक्षाओं में कोई समस्या नहीं है तो आपको फाइनल में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर ग्रेड का बड़ा हिस्सा आपकी चार परीक्षाओं में से छह पर और छह क्विज पर भी निर्भर करेगा और फिर आपका पढ़ना इसकी जानकारी देगा और इसमें मदद करेगा। इस कक्षा के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हर साल लोग मुझसे अतिरिक्त ऋण के बारे में पूछते हैं। जहाँ तक अतिरिक्त पढ़ने, अतिरिक्त लेखन या ऐसी किसी चीज की बात है तो मैं अतिरिक्त श्रेय नहीं देता। लेकिन एक चीज जो मैं कर रहा हूँ वह कुछ वर्षों से करता आ रहा हूँ, वह यह है कि मेरे पास इस कक्षा के लिए कुछ टीए हैं जो मुझे कुछ ग्रेडिंग और अन्य चीजें करने में मदद करते हैं। टीएस में से एक चार अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र आयोजित करने जा रहा है। अब उन अतिरिक्त क्रेडिट सत्रों का निर्धारण किया जाना है। मुझे उनसे मिलना है और मैं आपको समय से पहले ही बता दूंगा कि वे कब होने वाले हैं, वे कहां होंगे। वे आम तौर पर चारों परीक्षाओं में से प्रत्येक से लगभग एक सप्ताह या कम से कम कुछ दिन पहले घटित होंगे। तो फिर उनमें से चार होंगे। और वे जो हैं वह मूल रूप से यह है कि आप जो चाहें उसके लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। वे परीक्षा के लिए अध्ययन में एक समीक्षा सत्र हो सकते हैं या उनका उपयोग उन कुछ विषयों पर अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए किया जा सकता है जिनके बारे में आपके पास प्रश्न हैं या बहस करने के लिए या जो भी आप बात करना चाहते हैं। लेकिन अतीत में अक्सर उन्हें प्रत्येक परीक्षा के लिए एक समीक्षा सत्र में बदल दिया गया है। तो इसके लिए इसका उपयोग करने के लिए आपका स्वागत है। लेकिन उनमें से चार होंगे और वे आपका अतिरिक्त क्रेडिट होंगे। आप उनमें से किसी एक के पास जा सकते हैं और उसके लिए अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं या आप चारों में जा सकते हैं और अधिक अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त क्रेडिट के बारे में दूसरी बात मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं समय की घोषणा करूँगा और आपको बताऊँगा। वे आमतौर पर शाम या रात में होते हैं। जाहिर है दिन के दौरान यह काम नहीं करता है। लेकिन मैं आपको अपडेट रखूँगा कि वे कब और कहाँ होंगे ताकि आप अपने कार्यक्रम की योजना बना सकें। एक और बात जो लोग पूछते हैं, यदि आप उनमें भाग लेना चुनते हैं तो क्या आपसे किसी तरह से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है? दिखावा न करें और बैठकर किताब न पढ़े, झपकी न लें या अपने कंप्यूटर पर न खेलें, क्योंकि आपको इसका श्रेय नहीं मिलेगा। आपको अतिरिक्त श्रेय प्राप्त करने के लिए कक्षा में, चर्चा में या प्रश्न उठाने में या कक्षा में नहीं बल्कि चर्चा सत्र में भाग लेना चाहिए, ताकि अतिरिक्त क्रेडिट आपके अंतिम ग्रेड पर दिखाई दे। तो मेरे पास अतीत में बहुत सारे छात्र थे जो परीक्षा देते थे और उसे वापस ले लेते थे और कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं होता था और वे यह सोचकर परेशान हो जाते थे कि उनका अतिरिक्त क्रेडिट कहां गया। मैं सेमेस्टर के अंत में आपको मिलने वाले सभी अतिरिक्त क्रेडिट को जोड़ दूंगा और इसे आपके ग्रेड में शामिल कर दूंगा। इसलिए यदि आप परीक्षा में शामिल होना चुनते हैं तो इसे अपनी परीक्षा में न खोजें। फिर वे पूरी तरह से वैकल्पिक हैं, लेकिन यदि आप अतिरिक्त क्रेडिट चाहते हैं तो मुझसे अतिरिक्त पढ़ने या लिखने के लिए न कहें, उन समीक्षा सत्रों में जाएं। यह इस कक्षा के लिए अतिरिक्त क्रेडिट है। एक और बात अधिक गंभीर नोट पर, आप देखेंगे कि हमारी कक्षा को प्रोफेसर हिल्डेब्रांट द्वारा फिल्माया जा रहा है। यह वास्तव में उस समस्या को नियंत्रित करने का एक तंत्र है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं और वह कक्षा में आपके कंप्यूटर पर चल रही है। मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए टेड यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसा न हो। दरअसल इसके अन्य कारण भी हैं कि वह इसे क्यों फिल्मा रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं थोड़ा बहुत चलता हूं, कभी कभी नहीं चलता और मैं ट्रैक नहीं रख पाता। लेकिन मुझे हमेशा मिलता है, हर सेमेस्टर में छात्र आते हैं और कहते हैं कि वे परेशान हो गए हैं क्योंकि कोई कंप्यूटर पर खेल रहा है। जाहिर है आप नोट्स और इस तरह की चीजें लेने के लिए अपने कंप्यूटर को कक्षा में लाएंगे। यदि आप गेम या इस तरह की चीजें खेलना चाहते हैं तो आगे बढ़े और ऐसा करें, बस अपने कमरे में रहें, यहां ऐसा न करें। और कृपया अपने और अपने साथियों का सम्मान करें। यदि आप कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं तो आपके ठीक पीछे कोई है जो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। तो कृपया यदि आप गेम खेलना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं या फेसबुक पर खेलना चाहते हैं या कुछ और, आगे बढ़े और ऐसा करें, लेकिन सिर्फ अपने कमरे में रहें, यहां कक्षा में ऐसा न करें। इसलिए जो लोग ध्यान देना चाहते हैं और ध्यान दे रहे हैं वे इससे विचलित नहीं होते हैं। अन्यथा कृपया जानकारी, नोट्स डाउनलोड करने और नोट्स तथा इस तरह की चीजें लेने के लिए अपने कंप्यूटर अवश्य लाएं। ठीक है, कोई अन्य प्रश्न? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब तक कि आपके पास इसके बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न न हो, उम्मीद है कि मैंने अभी जो कहा है आप वापस जा सकते हैं और पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं और इसका अर्थ समझ में आएगा। यह डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन द्वारा लिखित न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर है। व्याख्यान एक, पाठ्यक्रम परिचय। डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन,